हम सफर न्यूज रूम से मैं अंबिका पेश हैं समाचार। आज दिन मंगलवार तारीख 27 मई 2025। मॉन्ट्रियल के सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ता इस साल के अंत में अपने स्मार्टफोन पर टैप करके बस या मेट्रो में चढ़ सकेंगे। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने पुष्टि की है कि वे ग्रेटर मॉन्ट्रियल क्षेत्र में कंज्यूमर्स के साथ एक छोटे से सैंपल के साथ इस समर में नई कार्यक्षमता का परीक्षण कर रहे हैं। टेस्टिंग चरण के अल्फा संस्करण के तहत, जिसकी पहली रिपोर्ट लाई गई थी, ट्रांजिट यूजर्स अपने ओपस कार्ड को सीधे अपने स्मार्टफोन पर लोड कर सकेंगे और फिर टर्नस्टाइल से गुजरते समय नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक का उपयोग करके रीडर पर फोन को स्कैन कर सकेंगे। एआरटीएम के प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षण तरंगों में किया जाएगा, जिसमें परीक्षकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। उनका कहना था कि इसका उद्देश्य विभिन्न मोबाइल उपकरणों वाले उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करना है और यदि आवश्यक हो तो बीटा संस्करण में इसका आवश्यक एडजस्टमेंट करना है। इस गर्मी में परीक्षण कितना सफल रहेगा इस पर निर्भर करते हुए ये सुविधा 2025 के अंत तक बाकी के ग्राहकों के लिए धीरे धीरे शुरू की जाएगी। स्मार्टफोन या बैंक कार्ड से सीधे किराए का भुगतान करने की सुविधा 2026 में शुरू होने वाली है। अप्रैल 2024 से ट्रांजिट उपयोगकर्ता iOS और एंड्रॉयड डिवाइस के लिए क्रोनो मोबाइल ऐप का उपयोग करके NFC के माध्यम से अपने ओपस कार्ड पर किराए को लोड करने में सक्षम हैं। कैनरा पोस्ट और उसके यूनियन सदस्यों के बीच बातचीत अब भी जारी है। क्यूबेक सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि वे अपने सर्विसेज क्यूबेक कार्यालयों में चेक डिलीवरी ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार CNESST, IVAC और QPIP, इसके साथ ही इंटीग्रेशन मंत्रालय और SAAQ से लाभ करने वाले लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूशन जारी रहेगा। क्यूबेक सरकार का कहना है कि चेक धीरे धीरे जारी किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत इस गुरुवार से होगी और मंगलवार और गुरुवार को सुबह 8:30 से दोपहर 12 बजे तक इन्हें वितरित किया जाएगा। रेवेन्यू क्यूबेक और रिट्रॉट क्यूबेक चेक सर्विसेज क्यूबेक कार्यालयों में वितरित नहीं किए जाएंगे। यदि दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता हो जाता है तो उन्हें कैनेडा पोस्ट द्वारा हमेशा की तरह वितरित किया जाएगा। क्यूबेक के लाक सेंट लुइस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लिबरल MP फ्रांसिस कारपेलागिया हाउस ऑफ कॉमन्स के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और वे उस कार्य की अध्यक्षता करेंगे जिसके बारे में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि उनका कॉकस आने वाले कुछ सप्ताह और कुछ महीनों में बहुत बहुत व्यस्त रहेगा। अध्यक्ष एक ऐसा सांसद होता है जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स के कामकाज की अध्यक्षता करने, सदन की कार्यवाही के निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में कार्य करने और बहस के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदान में चुना जाता है, जबकि अध्यक्ष को किसी पार्टी के सदस्य के रूप में संसद के लिए चुना जाता है, लेकिन वे पार्टी कॉकस में नहीं बैठते हैं क्योंकि उनकी भूमिका गैर पक्षपाती मानी जाती है। कार्नी सोमवार को पहली बार सदन में खड़े हुए और उन्होंने स्कारपेलगिया को बधाई देने से पहले व्यक्तिगत रूप से उनके लिए मतदान करने वाले और हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। कनाडा सरकार सामाजिक लाभ चेक सर्विसेज क्यूबेक कार्यालयों में वितरित नहीं कर रही है। सर्विसेज क्यूबेक में एकत्र किए जाने वाले चेक CNESSTVI की प्रतिपूर्ति और व्यक्तिगत चोट अपराध के पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य और स्थायी आंशिक मुआवजा प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति कार्यालय से ले सकेंगे। इस बीच कुछ अन्य समाचारों में क्यूबेक की एक महिला ने बताया है कि वे और उनके पति पिछले सप्ताहांत रिकॉर्ड में एक चैरिटी कार्यक्रम में साइकिल चलाते समय एक संभावित हिट एंड रन टक्कर में गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रांतीय पुलिस के अनुसार यह घटना शनिवार को शाम 5 बजे के करीब हुई। दुर्घटना के समय दंपत्ति अपने रेस के अंतिम चरण में थे। हालांकि उन्हें निचले शरीर में चोट लगने के बाद रविवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। उनके अनुसार साइकिल रेस प्रिमरोज डोंकी सेंचुरी के लिए धन जुटाने में मदद करती है, जिसमें वे घायल हुए थे। क्यूबेक सिटी क्षेत्र में एक डे केयर मालिक पर 14 महीने की बच्ची की मौत के मामले में फर्स्ट डिग्री मर्डर की हत्या का आरोप लगाया गया है। पारिवारिक डे केयर चलाने वाले इस व्यक्ति पर शुरू में बिना सोचे समझे हत्या का आरोप लगाया गया था। बाद में DPCP के अनुरोध के बाद इस आरोप में बदलाव का कारण नहीं बताया गया। इस बीच इस व्यक्ति के पति जोसफेट मयूबा पर भी मामले में मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। बताया जाता है कि जांच के बाद सेंट थेरेस स्ट्रीट पर डे केयर में लड़की की मौत के 4 दिन बाद 26 मार्च को इन पति पत्नी के जोड़े को गिरफ्तार किया गया था। किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला आज कनाडा की अपनी यात्रा के समापन को शाही धूमधाम से करेंगे, जिसमें घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी में ओटावा शहर के बीचों बीच एक परेड भी शामिल है। शाही जोड़ा सोमवार दोपहर ओटावा पहुंचा और स्थानीय किसान बाजार में उन्होंने समय बताया। साथ ही प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और गवर्नर जनरल मैरी साइमन के साथ निजी मुलाकात भी की। आज वे आरसीएमपी के घुड़सवार सदस्यों द्वारा अनुरक्षित एक लैंडो में संसद हिल यानी पार्लियामेंट हिल पहुंचेंगे और परेड मार्ग पर सवार होंगे, जहां शाही दर्शक उनकी एक झलक देख सकते हैं। किंग चार्ल्स संसद को ओपन करने के लिए सिंहासन यानी क्राउन से स्पीच पढ़ने के लिए तैयार हैं, जिससे वे अपनी मां क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा 1977 में भाषण दिए जाने के बाद ऐसा करने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट बन जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि इस वक्त ये कार्यक्रम चल रहा है और लगभग आधी सदी में पहली बार कोई सम्राट सेनेट कक्षों से क्राउन स्पीच कनाडा का भाषण दे रहे हैं, जो आगामी संसदीय सत्र के लिए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर रहा है। कार्नी के अनुरोध पर किंग चार्ल्स III और क्वीन कैमिला कनाडा आए हैं। उन्होंने आज कहा कि कनेडियन लोग खुद को किसी भी महाद्वीप पर किसी भी विदेशी शक्ति से कहीं अधिक दे सकते हैं और कनेडियन मूल्यों के प्रति सच्चे रहकर कनेडियन नए गठबंधन और नई अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा किंग ने यह भी कहा कि संसद को पहली बार खोले हुए लगभग 70 साल हो चुके हैं और तब से लेकर कनाडा में नाटकीय बदलाव आया है। उन्होंने 1957 में अपनी मां की यात्रा के बारे में भी बताया, जब आखिरी बार किसी राजा ने संसद को ओपन किया था। उनका कहना था कि आज कनाडा एक महत्वपूर्ण क्षण का सामना करना पड़ रहा है और लोकतंत्र, कानून का शासन, आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता, ये ऐसे मूल्य हैं जिन्हें कनेडियन लोग बहुत महत्व देते हैं और इनकी रक्षा के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। कनाडा में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म 1670 में शुरू हुआ था, जब क्राउन ने हडसन बे कंपनी को हडसन बे के आसपास की भूमि पर कानूनी और व्यापारिक आधार प्रदान किए थे। ये वो क्षेत्र था जिसमें बाद में क्यूबेक, ओंटारियो, मैनिटोबा, सैस्केचुआन, अल्बर्टा और नुनावट के हिस्से बन गए थे। इधर ट्रंप प्रशासन संघीय एजेंसियों से हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध को रद्द करने के लिए कह रहा है। सरकार ने पहले ही आईवी लीग स्कूल हार्वर्ड के लिए संघीय अनुसंधान और अनुदान, जिसमें कि 2.6 बिलियन डॉलर हैं, इससे अधिक को कैंसिल कर दिया है, जिसने अपनी नई नीतियों में बदलाव के लिए प्रशासन की मांगों को इनकार कर दिया है। ये थे अब तक के समाचार। ज्यादा समाचारों के लिए जुड़े रहिए रेडियो हम सफर से।